تو چندرما چلانے ہیں. یہ ہمارا کرم چلا آ رہا ہے, پہلی گاتھا سے شروع ہوا تھا اور وہاں سے کرتے کرتے یہاں تک آ گئے ہیں. پیڑھی پر بھی یہی آ رہا ہے تو وہ اسی کرم میں یہ ہے. اس کے گاتھا 14 تک اپنا وہ پنچ کلیاک ہے دہود کا وہاں ہوا تھا, اور اس کے بعد تھوڑا جے پور میں ہوا تھا, اور اس کے بعد یہ کرم میں آیا. پرکرن کیا ہے؟ سمے سار پرماگم بھید وگیان کا شاستر ہے, اور جیوا جیوا ادھیکار سے لے کر سمر ادھیکار تک بھید وگیان کی ہی مہیما گائی گئی ہے. جو 29 پرکار کے بھاو ہیں جنہیں آچاریہ امرت چندر دیو نے ورنادی اور راگادی کہہ کر دو بھاگوں میں وبھاجت کیا ہے, ورنادی میں 20 اور راگادی میں 9. یہ ورن سے لے کر گنستان پرینت جتنے بھی بھاو ہیں, یہ میں نہیں ہوں, یہ میرے نہیں ہیں, یہ بات جیوا جیوا ادھیکار میں بتائی. پھر میں ان کا کرتا بھوکتا بھی نہیں ہوں, یہ بات کرتا کرم ادھیکار میں بتائی. اس طرح ان 29 پرکار کے بھاووں سے انہیں بھید وگیان کرایا. یہ جدے ہیں اور میں جدا ہوں, اس کا نام ہے بھید وگیان. لیکن یہ کئی ترکیبوں سے پر پدارتھوں کے ساتھ سمبندھ استھاپت کرنے کی کوشش کرتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ یہی میں ہوں, کبھی کہتا ہے کہ یہ میرے ہیں, کبھی کہتا ہے کہ میں ان کا کرتا ہوں, اور کبھی کہتا ہے کہ میں ان کا بھوکتا ہوں. تو آچاریہ دیو کہتے ہیں کہ ناستی سروپی سمبندھ ہو پر دربیاتم تتو ہو, پر درب میں اور آتم تتو میں کوئی بھی سمبندھ نہیں ہے. کہ تم یہ چار پرکار کے سمبندھ توڑو تب ہم یہ مانیں کہ تم نے یہ مانا کہ یہ جدے ہیں اور میں جدا ہوں. پہلے تو کہتا ہے پترادک میں دھنادک میں کہ یہ ہیں تو میں ہوں, اور ہم یعنی مان لو کوئی 2-4-10-25 لاکھ-50 لاکھ کا گھاٹا ہو جائے تو ہم تو ختم ہو گئے. مانتا کہ نہیں مانتا؟ اس کا مطلب پیسہ کوئی میں مانا تھا نا, کہ میں ختم ہو گیا, تو ابھی پورا کا پورا موجود ہے. کبھی کہتا ہے یہ سماپت ہو جائے گا تو میں ختم ہو گیا, کبھی کہتا ہے یہ میرا ہے, سے کہتا ہے میں نے اکٹھا کیا ہے کمایا ہے, اور کبھی کہتا ہے میں اس کا بھوکتا ہوں. تو چاروں پرکار کے سمبندھ توڑے. کن سے؟ ورنادی اور راگادی سے. مانے 29 ہیں, 29 پرکار کے بھاو تو ابھی یاد تو رہیں گے نہیں آپ کو, اس لیے انہیں تمہاری سویدھا کے لیے دو بھاگوں میں باندھ دیے. ورنا دیاوا راگ موہا دیووا سروے بھاوا بھن اے واس پنسا. پھر بھگوان آتما سے ورنادی اور راگادی سبھی بھاو بھن ہی ہیں. چڈیلا میں دولت رام جی نے کہا نا, ورنادی ارو راگادی تین نج بھاو کو نیارا کیا. کیا کیا؟ نیارا جانا. نیارے تو وہ ہیں ہی, انہیں کرنا نہیں ہے کیا, لیکن یہ کیا مانے جانا. آتما کا کرنا تو جاننے روپ ہی ہوتا ہے, اسے نیارا کرنے میں کچھ کرنا نہیں پڑتا, کیونکہ استری پترادی کے تو جدے ہیں, شریر بھی جدا ہے کہ نہیں ہے. دو بھائیوں ہمیں آپس میں بہت جھگڑا ہو گیا تو لڑتے لڑتے ہمارے پاس آئے और उन्होंने कहा पंडित जी हमारा निपटारा करा दो नहीं तो ये सांझे की हांडी चौराहे पर फूटेगी, तो हमारा तो कुछ नहीं जाता, तुम्हारी बदनामी होगी। लेकिन हमारी क्यों होगी कि हम तुम्हारे शिष्य कहलाते हैं ना, हम तुम्हारी पार्टी के हैं ना। लोग कहेंगे देखो ये मुंह क्यों कैसे लड़ते हैं, इसलिए तुम हमारा ये निपटारा करा दो नहीं तो तुम्हारी इज्जत हो खराब होगी हमसे जाना। मैंने कहा वो तो ठीक है लेकिन तुम्हारा बंटवारा करना क्या है ये तो बताओ है? क्या बात ना है बोलो, तुम्हारे चार लड़कियां हैं और भाई के चार लड़के हैं, ऐसा करो दो लड़कियां तुम उसे दे दो लड़के उसके ले लो क्या। तो लड़के वाला आता क्या है मैं क्यों दे दूं, मैं तो एक नहीं दूंगा। तो फिर हमसे क्या कह रहे हैं क्यों, ये तो बटे दोनों के ये लड़कियां हैं ये लड़के हैं ये तुम जानते नहीं हो क्या, क्या बांटना है बोलो। कि बाल बच्चे नहीं बढ़ते हैं तो क्या बढ़ते, पत्नियां बढ़ती हैं तो क्या बात करते हो, फिर तो जो जिसकी है उसी की रहेगी। तो बटने को तो बेचारे मां बाप ही ने क्यों बोलो, पत्नी बटेगी नहीं बच्चे बटेंगे नहीं तो बटने को कौन रहा, मां बाप। तो मां बाप भी बांटे जा सकते हैं क्या, कैसे बांटोगे, एक भाई के यहां मां रहे और एक भाई के यहां पिता, ये बंटवारा सही होगा, उनका बुढ़ापा बिगाड़ोगे क्या बोला। ये तो सही नहीं हुआ तो कैसा करें, दोनों को आधे आधे मां बाप मिले, तो मां बाप नहीं बटेंगे तो उनकी लाशें बटेंगी। और भाग्य से तीन भाई हुए तो एक को मां और एक को बाप दे दो कैसे चलेगा बोलो, कि चार चार महीना तीनों के यहां रहेंगे क्यों, कैसे बांटोगे। अरे भाई जो बटा हुआ है वो बटा हुआ है, उसे कोई इकट्ठा नहीं कर सकता, और जो इकट्ठा है दुनिया की कोई ताकत उन्हें बांट नहीं सकती। बाल बच्चे अलग हैं पत्नियां अलग हैं तो वे अलग रहेंगी, और मां बाप इकट्ठे हैं तो वे इकट्ठे ही रहेंगे, उन्हें किसी कीमत पर बांटा नहीं जा सकता। क्या आप तो बेकार की बातें ले बैठे, इनकी बात कहां कर रहे हैं हम तो जा कह रहे हैं ये रुपया पैसा बांट दो मकान जायदाद बांट दो क्यों, ये बती बताई नहीं है क्यों। चार भाई हैं और बाप के पास 4 करोड़ रुपया है तो वे नहीं जानते हैं कि मेरा 1 करोड़ है, जानते कि नहीं जानते बोलिए। मान लो कल्पना करो कि 3 करोड़ रुपया पिताजी के पास हैं और लड़के 2 हैं, तो दोनों जानते हैं ना कि हम 1.5 करोड़ का मालिक हूं मैं, कोई नहीं मानता कि मैं 3 करोड़ का हूं। इतने में अस्पताल से खबर आई कि अम्मा के बच्चा हुआ है, तो दोनों भाइयों को 1 सेकंड में पता नहीं चलता है कि 50 लाख का धाड़ा पड़ गया है क्यों। तो अब जो 2 हिस्सेदार थे अब उसकी जगह 3 हिस्सेदार हो गए क्यों, तो क्या बांटना है। ज्ञान में तो सब बटा बताया है, कोई ऐसे नोट थोड़ी बांटने के इस नंबर का नोट इसे देना इस नंबर का नोट इसे देना। इसलिए कहते हैं भैया बांटना फांटना कुछ नहीं है, ये पर पदार्थ और आत्मा दोनों बटे हुए हैं, दोनों के बीच में वज्र की दीवार है अत्यंता भाव की है ना। सिर्फ हम आज तक जानते नहीं हैं, तो जानना है इसी का नाम है न्यारे करना। वरुणादि अरुराग आदि से निज भाव को न्यारा किया, तो 144 गाथा में समय सार की, कर्ता कर्म अधिकार और जीवा जीवाधिकार की सिर्फ इतनी सी बात बताई है, कितनी, कि ये 29 प्रकार के पदार्थ जिन्हें हम वर्णादि और रागादि कहते हैं, जिसमें स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव माई बाप सब आ जाते हैं, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं, इसका नाम है इन्हें न्यारा करना, न्यारा जानना। इतनी सी बात समझाई है समयसार की 144वीं गाथा तक। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शास्त्र की में लिखी है, तर्क से समझा दिया, सब लोग कह रहे अब भैया अब नहीं चलेंगे, अब तो इन्हें हमें अपना मानना छोड़ना ही पड़ेगा। तो तरकीब से एक बात करता कहता है कि ये बताओ कि ठीक है, ये मंदिर जो हमने बनाया है वो हमारा नहीं है, हमने बनाया नहीं है, हम इसके कर्ता भोक्ता नहीं है, लेकिन एक बात बताओ, है तो ये बहुत बढ़िया ना, कैसा बना आप बताओ। उसे ये सुनना है क्या, शिकायत के लिए पूछता है, इसके लिए इसमें ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, ये क्या बनाया, इसके लिए नहीं पूछता है कोई, क्या के लिए पूछता है, बना तो बहुत बढ़िया है। तो सामने वाले ने कहा कि बनी तो एवन चीज है, बस साहब मुझे संतोष हो गया। फिर काय को संतोष हो गया, किस बात का संतोष हो गया, क्यों, क्या मन में तो वो मान के बैठा है ना कि मैंने बनाया, तो तुमने कह दी बहुत बढ़िया बना, इसका मतलब मैंने बहुत बढ़िया काम किया, क्यों, अरे जब तेरा कोई संबंध ही नहीं है इससे, तो ये बढ़िया बना हो कि बुरा बना हो तेरे को इससे क्या लेना देना। ये बात पुण्य पाप अधिकार में बताई कि जब ये पर पदार्थ तेरे हैं ही नहीं, तो ये अच्छे हैं कि बुरे हैं ऐसा भेद करने से फायदा क्या, ये कर्म अपने हैं ही नहीं, तो उन कर्मों में पुण्य कर्म अच्छे और पाप कर्म बुरे ऐसा भेद करने से फायदा क्या, अपने होते तो कुछ सोचते, अपने कभी होने वाले नहीं है, अपन इनके कर्ता भोक्ता होने वाले नहीं है, जिनका हमसे कोई संबंध नहीं होता वो कैसे हैं इसकी हमें चिंता नहीं होती, क्यों, अपने घर में पोती पैदा हुई हो तो गोरी भूरी है काली कलूटी तो नहीं है इसकी चिंता होती है कि नहीं, और पड़ोसन की हुई हो तो हमें क्या लेना, चाहे जैसी हो फिर अंधी हो तो हमें क्या फर्क पड़ता है, क्या बनता, जब ये पद्रूपों के साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं, तो उसमें अच्छे बुरे का भेद करना ये पुण्य पाप संबंधी भूल है। ये पुण्य पाप अधिकार में सिर्फ इतनी सी बात बताई है, पाप बुरो पुण्य भलो, ऐसी जो तेरी अनादिकालीन मान्यता है उसमें कोई दम नहीं है, दोनों एक से ही हैं, और वे दोनों ही तेरे से भिन्न हैं, क्या मतलब, ये तो ठीक है ही, लेकिन अच्छा हम अशुभ भाव नहीं करें, इस शुभ भाव तो करें ना, क्यों, क्या कहते, अब ये बोलो करें कि नहीं करें, भैया करें कि नहीं करें ये सवाल कहां खड़ा होता है, सवाल तो ये है कि हम इसके कर्ता हैं कि नहीं हैं, हमें ये निर्णय करना, इसकी कोई बात ही नहीं कहता, तुम जैसा कहो वैसा करें हम तो, लेकिन तुम उसमें कुछ कर ही नहीं सकते, हम तुम्हें ये समझाना चाहते हैं वो तुम सुनने ही नहीं चाहते, तुम पर में कुछ कर ही नहीं सकते हो, असली मुद्दे की बात तो ये है, अब वो इसकी बात आप बताओ, आप तो जो कहोगे हम वो करेंगे, क्यों, किसमें, पर में, क्यों, हम कहते पर में कुछ करो ही मत, हाँ हाँ नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, अरे नहीं करेंगे नहीं, तुम करते ही नहीं हो, ना आज तक किया है और ना कभी कर पाओगे, ये समझो, इसका नाम नहीं करना है, थोड़ा ये पुण्य पाप अधिकार तक हो गई बात। फिर वो कहते हैं भैया तुम्हें इतना रस है ना ये पुण्य का, तो हमें ये बताओ कि ये पुण्य और पाप हैं, ये आश्रव के भेद हैं कि तुम्हारे आत्मा के, क्यों पुण्याश्रव पापाश्रव होता ना है? तुम ये निर्णय करो कि जिंदगी में से तुम ये अच्छे और बुरे कहते हो, करने की हमसे सलाह मांग रहे हो, ये किसके भेद हैं, तुम्हारे हैं कि आश्रव के हैं? ये तो भेद तो आश्रव ही के हैं, आश्रव ही के हैं, बंध के हैं कि आश्रव के? पुण्य बंध पाप बंध, क्यों? ये तो भैया आश्रव बंध के भेद हैं, तुमने अपने मान बैठे थे, और आश्रव के बारे में तो आपने छड़ाला में पढ़ा है, आश्रव दुख कारे घनेरे बुद्धि बनते तिने नेरे बेरे, के आश्रव बहुत दुख देने वाले हैं और बुद्धिमान लोग इन्हें छोड़ देते हैं, उनने ऐसा भेद नहीं किया कि पापा सब छोड़ देते हैं और पुण्या सब करते हैं, क्यों? क्या लिखा? आश्रव दुखकार घनेरे और बुद्धिवंत तिने, बस थोड़ा ही फर्क पड़ता है, पाप का उदय आए तो एकदम प्रतिकूलता हो जाती है, तकलीफें खड़ी हो जाती है ना, और पुण्य के उदय आए तो थोड़ी भोग सामग्री अनुकूलता से प्राप्त हो जाती है, यही होता है ना, और क्या? अब भोग सामग्री तुम्हें अनुकूलता से प्राप्त हो गई और फिर हमने उसे भोगा तो पुण्य बंधेगा कि पाप? बोलो तो कितना सा फर्क हुआ, तो एक ही स्टेप का फर्क हुआ। कि हम वो पुण्य से जो हमें भोग प्राप्त हुए हम उसे भोगोगे ही नहीं तो फिर तो नहीं बनेगा, पाप छोड़ देंगे तो नहीं फिर तो नहीं बनेगा। ऐसा करो तो भोग प्राप्त होने का फायदा क्या जब भोग ही नहीं पाए, क्यों भाई साहब? हम तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बढ़िया मिठाई दे रहे हैं लेकिन तुम्हें चखना तो बहुत दूर, सूंघना भी नहीं, क्या? हम तुम्हें 10 करोड़ रुपया दे रहे हैं लेकिन तुम इसमें एक नया पैसा अपने भोग के लिए खर्च नहीं कर सकते तो फिर अपन चौकीदार बन के रह गए, क्यों? ऐसे वे करोड़ रुपया हमारे किस काम के, बोलो बताओ? वो पुण्य का ऐसा उदय भोग सामग्री मिली वो हमारे किस काम की? कि भोगें तो पाप बंधे और त्यागें तो पुण्य बंधे, तो त्यागें तो त्यागने ही है तो मिले ही क्यों, की क्या जरूरत है? हाथी जैसा स्नान क्यों करते हैं, गजे स्नान है? पहले खूब नहाया और सारा कीचड़ अपने शरीर पे डाल दिया। ये भैया आश्रव के भेद हैं, ये बात बताई काल में आश्रव अधिकार में। और कितनी गाथाएं निकल गई इस तरह, इन पर से भेद विज्ञान कराते कराते आश्रव अधिकार तक आए, पर संबर अधिकार में भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, ऐसा लिखा है। पहली पंक्ति पढ़ना समय सार में, उसमें लिखा है कि अब भेद विज्ञान का अभिनंदन करते हैं, और अभिनंदन में बहुत सी बातें लिखी, तो यहां तक लिखी है कि जितने जीव आज तक मोक्ष में गए हैं वे सब भेद विज्ञान से गए हैं, और जितने जीव संसार में रखड़ रहे हैं वे सब भेद विज्ञान के अभाव में रखड़ रहे हैं। देखा कि नहीं? भेद विज्ञान ता सिद्धा सिद्धा एकल केतना अस्य भाव तो बद्धा बद्धा एकल केतना, क्यों? लोग शिकायत करते हैं हमसे कि तीन तीन साथ मंगा के रख लिए सामने, पढ़ते तो एक पंक्ति नहीं पर अपने ठोके जाते हैं। ये आपकी शिकायत नहीं है, मेरी अम्मा की भी थी। जब हम वहां से पढ़ के आते आए थे विद्यालय में से अपने गांव में, तो हम गांव के मंदिर में प्रवचन करते, ऐसा खोलते तो भैया तू किताब तो देखते ही नहीं, किताब तो देखते ही नहीं, दे सका। और तो हम सब किताब की बातें कह रहे हैं, तुमने हमें 5-7 साल पढ़ाया काय के लिए है, हम 7 साल तक वही तो पढ़ते पढ़ते तो आए हैं, अब वही तुम कह रहे पढ़ते नहीं हो, 7 साल तक पढ़े तो पढ़े ही नहीं, क्यों तुझे तुम पढ़ने ही नहीं मानती हो, यहां ऐसा करके पढ़े तो पढ़ना, तुम कह रहे पढ़ा हम तो लिखे हैं भैया, सारी जिंदगी हो गई 76 वर्ष के हो गए, इसके अलावा कोई दूसरा काम ही नहीं किया, और हम तो उस गांव में आए हैं, उस एरिया में आए हैं कि जिस एरिया में आप 50 साल से, तो आपको ही पता है कि इस समय सार हम पढ़ रहे हैं, 50 साल से पहले भी हम श्रावगढ़ में आए थे, तब भी हमने समय सार सुनाया था आपको है? कुछ लोग होंगे बुजुर्ग जिन्हें याद होगी, सबसे लगातार पढ़ाई तो रहे हैं पर क्या किया, अरे पढ़ के बताते तो एक पेज पढ़ के बता पाते, पर हमने आपको संबल अधिकार तक पढ़ा दिया, क्यों पढ़ा दिया ना, कि कितनी बात अभी तक हो गई, अब वो कहते हैं कि ऐसा भेद विज्ञान यदि तुमने कर लिया तो क्या होगा, तो वो यहां कह रहे हैं कि भोग बंत के ज्ञान बंत के भोग निर्जरा हेतु है, अज्ञानी को वही कर्म फल दे तू है, यह अचरज की बात ही ये नहीं आवही, बूझे कोई शिष्य गुरु समझावही। निद्राधिकार में कहते भैया एक दफे तुमने वो सच्चा भेद विज्ञान कर लिया श्रद्धा पूर्वक, इन पर से भिन्न अपने भगवान आत्मा को जान लिया, तो तुम 5 इंद्रियों के भोगों के बीच में रहोगे तो भी तुम्हें निर्जरा होगी, ये निद्राधिकार है हल नहीं ना, और ये नहीं जाना तो तुम कितना ही वृत उपवास करना, कितना ही क्रिया कांड करना, क्रिया कांड से ना मिले यह आत्म अभिराम, और ज्ञान कला से सहज ही प्रगट आत्मा राम। ये निद्राधिकार ने बताया, ये निद्राधिकार चल रहा, इस तरह मैंने अभी तक आपको 214 गाथाओं में क्या बताया ये बात बता दी, कितने 10 मिनट में 15 मिनट में जो भी हुए हों, 20 मिनट में कितना बता दिया, अब अपनी 215वीं गाथा चलनी है, वहां आ गए अपन, पता तो होना चाहिए कि हम कहां खड़े हैं, अपन अपनी कार दौड़ा पे चले जाते हैं तो बार बार देखते हैं कितने किलोमीटर आ गए और कितना किलोमीटर अभी बाकी है और हम कहां खड़े हैं, होता ना, रात के 2 बजे आपकी आंख खड़े रेलवे में वैसे हो तो पड़ोसी से पूछते हो ना भैया कौन सा स्टेशन है, क्यों एक ही प्रश्न होता है कि नहीं, कहां तक आ गए, तो अपन कहां तक आ गए, अभी तक हमने 3-4 साल में जो समय सार सुनाया आप लोगों को वो कहां तक आ गए ये बात बताई। अब देखिए अपना एक कलश है 146वां कलश जो अपन पढ़ते हैं और इसके बाद में गाथा आएगी 215वीं, ये कलश उसकी उत्थानिका का, उत्थानिका जानते हैं जो आरंभ करते हैं ना, हम जो हेडिंग देते हैं उसका कलश है कि पूर्व मध्य निज कर्म विपाकात ज्ञानिनो यदि भवत्युपयोगाम तदत्ग वियोगात नून मेति न परिग्रह भावम, क्या होय कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग परिग्रह तो पावे नहीं क्योंकि राग वियोग, पूर्व कर्म के उदय के अनुसार अनुकूल प्रतिकूल भोग सामग्री तो मिलती ही है क्या, लेकिन होय कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग, ज्ञानी को कर्म के उदय से भोग सामग्री भी मिलती है और उसे भोगने के भाव भी होते हैं। थोड़ा बहुत कर्म फलों भी तो आप जानते होंगे, पढ़ा होगा ना कर्म के बारे में, क्योंकि हम तो समय सार पढ़ने वाले हैं, हमें कर्मों और उनसे क्या लेना देना। थोड़ा गोमर सार भी पढ़ो, आप जानते हैं कि अब कर्म दो प्रकार के होते हैं, घातिया और अघातिया, ये नाम तो सुने होंगे कि नहीं। तो अघातिया कर्मों के उदय से हमको संयोग मिलते हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा नगर देश गांव, ये जो हमें प्राप्त हुए हैं ये कैसे हुए हैं? अघातिया कर्मों के उदय से। घातिया और पुण्य और पाप का भेद अघातिया कर्मों में होता है, घातिया कर्मों में नहीं। घातिया कर्म तो सब पाप ही पाप हैं। तो ये जो स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा जो हमें मिले हैं, ये कैसे मिले भैया? अघातिया कर्म के उदय से। अभी तक आपने ये सुना होगा हमें जैसे पंडितों से कि पुण्य के उदय से मिले, क्यों बोलते ना सब भैया, ये सब हमें जो मिला है आपकी कृपा से, पुण्य के उदय से हमें तो सब मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है, धोखे में मत रहना। ये सभी संयोग पुण्य के उदय से मिलते हों ऐसा नहीं है। रामचंद्र जी जैसा बेटा राजा दशरथ को पुण्य के उदय से मिला था, क्यों? तो राजा सैनिक को कोणक जैसा बेटा भी पुण्य के उदय से मिला होगा, इसने उन्हें जेल में डाल दिया था, क्यों बोलो? औरंगजेब जैसा बेटा भी शाहजहां को पुण्य के उदय से मिला होगा, जिन्हें जेल में डाल दिया था। ये रुपया पैसा जिससे हमको अनुकूल भोग सामग्री मिली है, ये पुण्य के उदय से ही मिला होगा कि जिससे इनकम टैक्स वाले झाड़े मारते हैं और अच्छे अच्छे लोगों को जेल में डाल देते हैं, क्यों? तो पुण्य के उदय से मिलता होगा। सीता जैसी पत्नी यदि राम को पुण्य के उदय से मिली थी तो सुर्पनखा जैसी पत्नी भी पुण्य के उदय से मिलती होगी। अरे अनुकूल पत्नी पुण्य के उदय से मिलती है और प्रतिकूल पत्नी पाप के उदय से मिलती है। अनुकूल पति कमाऊ सुंदर धर्म की रुचि वाला सात्विक वृत्ति वाला पति यदि पुण्य के उदय से मिलता है तो शराबी कबाबी क्यों जुआरी पति पाप के उदय से मिलता है, कोई पुण्य के उदय से मिलेगा? यानी अनुकूल संयोग पुण्य के उदय से मिलते हैं और प्रतिकूल संयोग तो अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप दो ही तरह के होते हैं भाई साहब, घातिया तो पाप ही पाप होते हैं। तो ये जो संयोग हमें मिले हैं, संयोग माने पांच इंद्रियों की भोग सामग्री, वो पुण्य के उदय से भी मिलती है और पाप के उदय से भी मिलती है। अब उसको भोगने का भाव हमारे मन में, वो तो पुराने पुण्य से पाप से मिल गए, ये काय से होता है? तो ये घातिया कर्म के उदय से होता है। देखो अब समझ सुनना ध्यान से, ये अभक्ष भक्षण मांस मदरा ये भले ही तुम्हें मिल गई पुण्य से या पाप से, लेकिन इसे पीने का भोगने का भाव वो अघातिया कर्मों के उदय से नहीं होता, वो घातिया कर्मों के उदय से होता है। अघातिया कर्मों के उदय से संयोग मिलते हैं, भोग सामग्री मिलती है, और घातिया कर्मों के उदय से वो भोगने का भाव आता है। अब वो कहते हैं कि यदि हमारे ज्ञान में ये बात आ गई और कदाचित पुराने कर्म के उदय से हमें वो भोगने भी पड़े तो भी ज्ञानी को बंध नहीं होता। अब ये खतरनाक बात है, अज्ञानी को होता है और ज्ञानी को नहीं होता है।
क्या कहते हैं?
ज्ञानवंत के भोग निद्रा हेतु हैं, अज्ञानी को वही कर्म फल देते हैं। ये बात कह रहे कि ज्ञानी के तो कर्म झड़े उन्हीं से और अज्ञानी को पाप बने, ऐसा अन्याय कैसे? भोग दो ही भोग है। देखो भाई, ये सिपाहियों की टुकड़ी है और जनता में ड्यूटी पे लगा दिए, बिल्कुल बंदूक खोल के रखे हैं और ऊपर से ऑफिसर ऑर्डर देता है कि गोली चलाओ। क्यों जी? तो वो गोली चलाता है तो पाप किसे ज्यादा लगेगा, चलाने वाले को कि ऑर्डर देने वाले को? तो ऑर्डर देने वाला तो वो कर्म है, तो भोग, समझ गए ना? वो तो उसको कोई द्वेष नहीं है, उसे थोड़ी गुस्सा आ रहा है सामने वाले पे कि वो गोली से उसे चला के मार दे। और अज्ञानी रस ले लेकर के उसे मारे और खुद की गुस्सा में आकर के उसे मारे, तड़फा तड़फा के मारे, क्यों? तो फिर उस ऊपर वाले को पाप लगाए खुद को? अज्ञानी रस ले लेकर के भोग भोगता है और ज्ञानी कर्म के उदय से भोगता नहीं, भुगतता है। बोलते हैं भोगने में भुगतने में अंतर समझते हो कि नहीं समझते हो? क्यों? पुण्य के उदय से अनुकूल पत्नी मिल गई, सुंदर है, सब तरह से सब बात है, तो उसे मस्त होकर भोग रहे। और एक आदमी को मिल गई, गले पड़ गई, अब क्या करें, सज्जन हैं, अब अपने यहां तलाक तो होता ही नहीं है, क्यों? अब तो गले पड़ गई तो सारी जिंदगी तो निकाल नहीं है, है? तो वो क्या है? भुगतता है, समझ रहे ना? एक भोगता है और दूसरा भुगतता है। ज्ञानी भोगों को भोगता नहीं है, भुगतता है। तो इस निद्रा अधिकार में कह रहे, देखो, होए कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग। ये हमने वो संस्कृत का जो छंद है ना, बहुत सरल भाषा में हिंदी में एक दोहा में रख दिया है। पूर्व कर्म के उदय से ज्ञानी के जो भोग, परिग्रहत्व पावे नहीं क्योंकि राग वियोग। वो परिग्रहत्व को नहीं पाते हैं, वे परिग्रह नहीं कहलाते हैं। खजानती है, सारे रुपया पैसा तो उसके ही पास रहते हैं ना, तिजोरी की चाबी उसके पास रहती है कि नहीं रहती है? लेकिन वो तिजोरी का मालिक है, उन पैसे का मालिक है, उसके वे परिग्रह हैं। और जिनके पास वो तिजोरी की चाबी नहीं है, वैसा राजा या सेठ जो भी है, वो उसका मालिक है। यही बात है कि परिग्रह तो पावे, वो उसके हाथ में है, वो लेता देता भी है, उसे नियम बता दिए गए कि इस नियम के अनुसार देना और लेना, हमारी चिट्ठी लेके कोई आए तो उसे दे देना, हमारी हम नहीं दे, मना करें तो नहीं देना, क्यों? अब वो हरेक से थोड़ी कहता फिरता है। ऊपर से सारा आ गया कि नहीं देना, कि साहब वो मेरी चिट्ठी लेके आएगा, चिट्ठी तो लिख के देनी पड़ी, बहुत पीछे पड़ गया था, क्यों? लेकिन तू टाल देना, क्या करे? बोले उच्च सेठ जी की चिट्ठी भी आए कहीं, तो कहते सेठ जी ने चिट्ठी लेके पीना लाए थे, देता नहीं, किसी पीने में क्यों दर्द होता? और कुछ कहना भी नहीं, कह भी नहीं सकता, बोलो क्या करो? वो कहते हैं कि शास्त्रीय भाषा में वे उसके परिग्रह नहीं है, क्योंकि राग वियोग अंदर में राग का वियोग है, वो राग माने मुच्छाते हैं, माने ऐसी मान्यता का कि ये मेरे हैं, ऐसी मान्यता उसकी नहीं है, कि मैं देता हूं मैं लेता हूं ऐसी मान्यता उसकी नहीं। पैसा चंदे में सेठ जी मुनीम जी ही देते हैं, मुनीम जी ही लेते हैं, उगाई भी मुनीम जी करते हैं, क्यों? लेकिन ना वे लेते हैं ना वो देते हैं। ये निजराधिकार में बता रहे कि भैया तुम एक दफे ये समझ लो कि समझ से काम हो जाएगा कि हाँ भैया काम तो समझ से ही होगा। ये जगत की समझ में नहीं आता है। जगत कहता है कि वाह कैसे करें, हम तो कह रहे राज में बराबर वैसे ही के वैसे राज देश में उलझ रहे हैं, सब बात हो रही है, और तुम कह रहे कि अब भरत चक्रवर्ती थे 96,000 पत्नियां, 6 खंड की विभूति, और तुम वो कैसे मान लो कि उनको वो कर भोग मेदरा के हेतु में कैसे होंगे, क्यों जगत की समझ में नहीं आता है। देखो भैया हम बाहर से देख करके निर्णय नहीं कर सकते। एक आदमी ने भरत चक्रवर्ती की तो 96,000 शादियां थी, एक सिद्धांत मैं आपको बताता हूं कि तीर्थंकर चक्रवर्ती ये कभी अनुवृत नहीं लेते। भवनारायण नहीं शास्त्र में लिखा होगा, पूजन में पढ़ने में आएगा कि भये तुम्हें अष्टम बार से कुमार धरे अनुग्रहत महासुख का। घबराना नहीं, वो बहुत उपचार की कथन है जो मैं बता रहा हूं, ये करुणान योग का परफेक्ट है, पक्का ले नहीं सकते वो अनुग्रह। तुम क्या दिक्कत है, अनुग्रह में क्या होता है, परिमाण करना पड़ता है ना, तो 96,000 पत्नियां हैं, बोलो कितनी छोड़े और कितनी रखे। अरे छोड़े तो 96,000 ही छोड़ना पड़े और रखे तो 96,000 ही रखना पड़े, ऐसा नहीं कर सकता 48,000 रखी 48,000 छोड़ी, समझ आई ना, इसलिए नहीं होते उसके। 6 खंड का राज में 3 खंड छोड़े और 3 खंड रखे, ऐसा नहीं होता, समझे, वो 6 ही खंड छोड़े तो के 6 ही खंड रखे, इसलिए उसके अनुवृत्त हो ही नहीं सकते। सीधे महावृत होते हैं, और वो तो भैया किसने कौन देता है, जिसको कोई कमी हो, जिसके पास कमी नहीं है पैसे की, वो किस्तों में क्यों चुकाएगा। भैया आप ले लो 1,00,000 रुपए दान में दे दो, 20,000 साल में 5 साल में देना। हमें ऐसे सेठ भी दिखे मिले हैं, पंडित जी हमने ये नहीं सीखा है, हम तो देंगे तो पहले देंगे और बाद में कहेंगे, हम कर्जा नहीं लेते हैं 5 साल में चुकाते रहे, कहते कि नहीं कहते। और जिनके पास वास्तव में नहीं है वे कमाएंगे और देंगे क्यों, ऐसा होता क्या नहीं। तो वो तो इतने उग्र पुरुषार्थी हैं कि वे छोड़ना चाहे तो 1 मिनट में छोड़ दें सर, वे किस्तों में क्यों छोड़े, अनुग्रह तो किस्त है भाई साहब। लेकिन वही भरत चक्रवर्ती जब वो युद्ध करने गया था भगवान ऋषभ देव की दिव्य ध्वनि छोड़कर, तब और जब वो 8 घंटे बाद दीक्षा लेने वाला है, तब भी उसके लिए 94,000 पत्नियों में 6 घंटे की विभूति थी कि नहीं थी, और दोनों समय के भावों में कितना फर्क था, अंतर समझ में आया कि नहीं। जब तुमने मकान बनवाया था रावगढ़ में तो एक एक चीज ईंट अपने देख देख के शौक से लगाई थी, सब पलंग शौक से बनवाया था, गड्ढा रदिया सब क्यों बढ़िया बढ़िया किया था कि नहीं, और जो रस उस वक्त तक था, अब 40 बरस बाद अब उसी मकान में उसी कमरे में उसी पलंग पे उसी गद्दे पे सोते हो, लेकिन राग एक सा है, अब क्या करें, अब खराब ना है कहीं से, अब नया कुछ करने का विकल्प ही नहीं रहा। वही चीजें तो तुम्हारे साथ रहेंगी कि नहीं रहेंगी, लेकिन अंदर से कितना फर्क पड़ गया। कहते हैं ज्ञानी की और अज्ञानी के बाहर के संयोगों में देखने से कितना फर्क मालूम नहीं पड़ता है, अंदर में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक उदाहरण देके मैं आपको बात बताता हूं। 4 भाई एक साथ घर में एक थाली में बैठ के खाना खाते हैं, खंडेर वालों में ऐसा बहुत होता है, भाई एक थाली में बैठ के नहीं खाते समझते हैं उनको झगड़ा हो गया, अपने यहां तो नहीं है ऐसा, वहां बहुत एक थाली में खाते, लेकिन चारों को कर्म का बंध एक सा होता होगा, दाल भी बोई, सब्जी भी बोई, रोटी भी बोई, चटनी भी बोई, सब खाते कि नहीं खाते? और चारों के पुण्य पाप में फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? काय से फर्क पड़ता है बोलो? जब घर में बढ़िया चटनी बनती है तो सब भाई खाते हैं, अच्छी भी लगती है सबको, लेकिन उनके राग में कितना अंतर है ये तो उस दिन पता चलता है जिस दिन चटनी नहीं बन पाई हो। क्या एक भाई को तो पता ही नहीं चलता कि आज थाली में कुछ कम है, जब आती है तो शौक से खाता है, और नहीं आए तो पता ही नहीं चलता कुछ कम है, जो होता है खा लेता। क्यों? दूसरा भाई कहते कि आज कुछ कमी लगती है, क्या बात है, आज मजा नहीं आ रहा है। हाँ चटनी नहीं है। क्यों भाई चटनी क्यों नहीं बनाई? कि नहीं वो आज व्यवस्था नहीं हो पाई। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, कल से बननी चाहिए, अगर वो भी खा लेता है। क्यों? फिर तीसरा चटनी क्यों नहीं बनी? क्यों? क्या वो बाजार से में क्यों नहीं आ पाई? कमाते काय के लिए? इतना नहीं कर सकते तुम, जाओ बाजार से पहले सामान लेके आओ, चटनी बनाओ, तब खाएंगे। क्यों ऐसा? और चौथा चटनी। अरे बाजार से लाओ, मैं तो खाऊंगा ही नहीं, और भी कोई नहीं खाएगा, मैं तो ज्यादा हूं, और तुम मजे से खा, ये भी चलेगा। क्यों? जब चटनी नहीं मिली तो पता चला कि तारों के राग में कितना अंतर, और होती तो तारों खा के चले जाते। अब पाप में फर्क पड़ता, चटनी सब ने एक सी खाई और पाप में अंतर पड़ जाता, एक को अनंतानंदी का पाप लगते, एक को अप्रत्यक्ष, समझ गए? मान्यता से कितना फर्क पड़ जाता है वो बात है। यहां बनारसी दास लिखते हैं इसी का, उग्र विक्रम उदय रस भुंजे, ज्ञान मगन ममता न प्रपुंजे। कर्म के उदय का रस को भोगता है ज्ञानी, लेकिन अपने ज्ञान में मगन है, उसमें ममता नहीं रहता है। उर्मे उदासीनता लहिए, यो बुद्धिवंत परिग्रह बंत न कहिए। इस प्रकार ज्ञानी जन परिग्रह वाले नहीं कहलाते, दोनों परिग्रह के बीच में हैं, फिर भी दोनों की स्थिति है ज्ञानी और अज्ञानी की। इसलिए वो कहते हैं भाई कि तुम सबसे पहले छोड़ने की बात करने के पहले ये तुम्हारे हैं कि नहीं हैं, इस बात पर गंभीरता से विचार कर। मैंने एक धर्म के दर्शन नामक किताब लिखी है, आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, तो उसमें आकिंचन्य नाम का धर्म है, आकिंचन्य धर्म नौवां धर्म, और उसमें परिग्रह के त्याग को आकिंचन्य बोलते हैं ना, ये तो आप जानते होंगे ना। उसमें मैंने दो पंक्तियां लिखी, बहुत मार्मिक हैं। क्या है वो पंक्तियां? वो हैं ये पंक्तियां कि कुछ लोग परिग्रह के जोड़ने में मगन हैं। क्या? कुछ लोग परिग्रह को जोड़ने में मगन हैं, और कुछ लोगों को धर्म के नाम पर छोड़ने की धुन सवार है। ध्यान से सुनना, फिर बोलता हूं। कुछ लोग परिग्रह को जोड़ने में मगन हैं, तो कुछ लोगों को धर्म के नाम पर परिग्रह को छोड़ने की धुन सवार है। पर ये कोई सोचना ही नहीं चाहता कि ये परिग्रह मेरा है कि नहीं। यदि ये निर्णय हो जाए कि ये मेरा है ही नहीं, तो क्या छोड़ना और क्या जोड़ना, बोलो? क्यों? बोलो, परजीवों को मारना कि नहीं मारना? नहीं मारना। अरे इस पे लड़ रहे हो, तेरे ये तो सोचो कि तुम मार सकते हो कि नहीं। जब मार ही नहीं सकते हो तो मारना कि नहीं मारना, ये दूसरा प्रश्न आता कहां से है? कि भोग भोगना कि नहीं भोगना, कि तुम भोग ही नहीं सकते हो तो भोगो न भोक्ता स्वयं एव भोक्ता, है ना। भोगों को नहीं भोगा, भोगों ने हमें भोग लिया, हमारी जिंदगी निकलेगी मुफ्त में। अब वो इसी बात को गाथा में के माध्यम से कहेंगे। देखो जो अपनी 215वीं गाथा चलानी है ना अपन को, उपन्नोदय भोगो वियोग बुद्धि यतस्य सो निच्चम शंखा मन स्वागत उदयस्य न कूजते नानी उदय गते जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है अरे अनागत भोग की सज ज्ञान की कांक्षा नहीं। अब कहते हैं भोग तीन प्रकार के हैं, कौन कौन से भैया? एक भूतकाल के, एक वर्तमान के और एक भविष्य के। अपने भूतकाल में अपने जितने भोग भोगे आज तक, और भविष्य में जो भोगेंगे, और वर्तमान में जो भोग रहे हैं, अब अपने अपने जीवन पर लगा लो। मान लो 70 वर्ष की हमारी उम्र है तो हम पुराने भोग भोग के याद कर करके मजा आ रहा था, नरस्वत मजा आया था। अरे खीर तो उनके यहां जैसे बनी थी सावन पे, ऐसी हमने आज तक कहीं खाई नहीं। क्यों? उनकी शादी में गए थे जब चूरमा बाड़ी जैसी बनी थी, ऐसी चूरमा बाड़ी हमें कभी आज तक मिली नहीं। अरे खाई होगी, जब खाई होगी पेट में तो निकल गई है, तेरे दिमाग में अभी भी भर गई। ये तो भूतकाल के भोग। एक वर्तमान में जो हम भोग रहे, एक भविष्य के भोग। अज्ञानी जीव तीनों भूकाल के भोगों को प्रति समय भोगता है। क्या पुराने याद कर करके भोगता है? क्या भोगता क्या नहीं भोगता? पुराने भोगों को याद कर करके रस लेता है, आनंद आता है, खुश होता है। वर्तमान के तो भोगते ही है, और भविष्य में भी ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तीनों काल के। एक भाई रास्ते में जा रहे थे तो वे हमसे बोले, पंडित जी ये अपना मकान है। मैंने कहा अच्छा, हमने तो सुना तुम किराए के मकान में रहते हो। बोले हाँ, अभी तो किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन पहले भी अपन अपने ही था। तो क्या करें, निकाल दिया हमने से, निकाल दिया 50 लाख में। अच्छा, मकान को निकाल दिया तुमने? क्या मकान ने तुम्हें निकाल दिया? मकान तो वो वहीं का वहीं खड़ा है, वो तो एक इंच नहीं जगह निकले तो तुम हो गए थे, पर हमने निकाल दिया। तुमने निकाल दिया ना, और 50 लाख अपनी जेब में रख लिए। क्या हाँ, फिर भी ये हमारा है, समझ गए? अभी भी उसमें एकत्र बुद्धि चल रही है। जब तुमने निकाल ही दिया है तो हमारा है क्यों कहते हो? होता क्या नहीं होता? फिर आगे आए, ये भी अपना है, ये कैसा है, इसमें हम किराए से रहते हैं, ये भी अपना। फिर आगे गए कि ये भी अपना है, क्यों? इसे खरीदने का विचार है। तीनों में एक भी अपना नहीं है। तीनों में एक भी अपना नहीं है, लेकिन तीन काल के परिग्रह को मैं अपनापन लगाता हूं। ये इसने लिखा है सब, समझे ना। मैंने गाथा तो पढ़ी थी, पद्यानुवाद पढ़ दिया, तुम कहो तो और हिंदी भी पढ़ दूंगा। देखो भाई, मैंने सारी जिंदगी पढ़ा है, फिर लिखा भी मैंने ही है, और उसके बाद भी जब मैं यहां प्रश्न करने आता हूं तो पहले पढ़ के आता हूं। फिर भी तुमने जगह से पढ़ो पढ़ो, कितना पढ़ू? अरे तुम सुनो कुछ, तुम्हें कोई शक हो तो घर पे जाकर पढ़ लेना। उनमें वियोगी बुद्धि है। देखो क्या कह रहे हैं, उदयगत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है। जो वर्तमान तीनों तरह के, तो भूतकाल के गए अब कह रहे उनको क्या करना, गए तो गए, हो गया वो, तो उसमें हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो सब मानते ही हैं, भोगे तो भोग लिए, नहीं भोगे तो नहीं भोगे, जो कुछ हुआ। इसे भूतकाल के भोगों को तो वो याद नहीं करता मुफ्त में, और भविष्य के भोगों की कामना नहीं करता, क्योंकि उसकी भोगों में सुख बुद्धि ही नहीं है। अब रह गए वर्तमान के। देखो तीन काल में भूतकाल कितना अनंत, भविष्य कितना उससे अनंत गुण, और वर्तमान एक समय का। वैसे हम बोलते हैं इसी शताब्दी में तो 100 वर्ष का वर्तमान बना लेते हैं, तो इसी वर्ष तो एक वर्ष का बना लेते हैं, इसी माह तो एक महीने का बना लेते हैं, आज तो 24 घंटे का बना लेते हैं, और अभी क्यों। लेकिन असली वर्तमान एक समय का, क्योंकि एक समय पहले तो भूतकाल में चला गया, और एक समय बाद भविष्य में चला गया, तो दो का तो निपट गया ना, भूतकाल तो निपट गया, बीती ताई विसार दे, और भविष्य के बारे में शुद्ध मत ले, आगे की शुद्ध मत ले, ले नहीं क्यों। अब वर्तमान इतनी छोटी सी समस्या थी, इसको तुमने कितनी बड़ी बना दी थी, अनादि अनंत क्यों। अरे अनादि अनंत तो तेरा आत्मा है मूर्ख, ये भोग थोड़ी अनादि अनंत है। एक समय की समस्या और हमने कितनी बड़ी बना दी। देखो भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान के दोनों बीच में कितनी जगह छूटी है, इन जगह है बीच में, आरे बाल के बराबर भी नहीं है, क्योंकि कुछ जमीन तो मध्य प्रदेश की है और कुछ राजस्थान की है, समझ गए ना। यहां से जाओ आप तो है कहीं लैंड पड़ी है, कोई खाई है। अब कोई मध्य प्रदेश से राजस्थान में गेहूं ले जाना है तो कोई कठिन काम तो नहीं है, समस्या तो एक आड़े बाल के बराबर भी नहीं है। लेकिन हम कहते हैं हमें रायपुर से ले जाना है, और कहां पर, जोधपुर तक, सब 200 किलोमीटर है और प्रतिबंध है, अब कैसे ले जाएं। अब हमने जो समस्या बिल्कुल आड़े बाल के बराबर की थी उसको 2000 किलोमीटर की बना दी। अरे मूर्ख, तुम रायपुर का गेहूं यहां गुना तक लाए कौन रोकता है, इसका कौन रोकता है बता, यहां रावगढ़ तक लाए कौन रोकता है, क्या समस्या है। और फिर जरा से छपड़ा में पहुंच जाए तो राजस्थान में कहीं ले जाए कौन रोकता है। समस्या तो बॉर्डर की है ना, इतनी छोटी सी की समस्या को हमने कितनी बड़ी बना दी। समस्या तो वर्तमान की है कि भैया वो भी तो निपटानी पड़ेगी ना, ध्यान निपटाते हैं कैसे निपटे, उसमें वियोगी बुद्धि है भैया, हमें तो नहीं चाहिए, अब कर्म के उदय से भोगने पड़ रहे हैं तो भुगत लेंगे क्यों। आपने बहुत बढ़िया, हम आए तो बहुत बढ़िया चूरमा बाटे, न मालूम चाहते क्या चीज बढ़िया होती, मुझे मालूम नहीं ज्यादा रायगढ़ में क्या चीज बढ़िया होती है, जो कोई मेहमान आए आपके बहुत प्रिय तो उनको आप बनाते हो क्यों, कि बहुत खुशी प्रसन्नता से आज हमें बड़ा मौका मिला है तो सारा माल मसाला इनको ही खिला दें, होता कि नहीं होता। अब आपने खूब तैयारी करी, अब हमारा पेट खराब है, डॉक्टर ने कहा घी नहीं खा सकते, मिर्ची नहीं खा सकते, नमक बंद है, ब्लड प्रेशर है, अब क्या करें, अब बोलो क्या करें। अब थाली में परोस दिया, पहले कुछ कहा नहीं, अब सामने आ गया, त्याग तो है नहीं क्यों, कहीं खा सकते नहीं है तो क्या करते हैं। फिर बोलिए आप बहुत प्रेम से खिलाते हो और हम भुगत पे क्यों, और बीच में कहते जाते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्यों कहा जाता है तो भोजन के बारे में महिलाएं पूछे कैसा बना, तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसलिए कहते जब बेई बात में महिलाएं खाती हैं वही खाना, तो नहीं इसमें तो नमक ही नहीं, इसमें तो मिर्ची इतनी ज्यादा हो गई कि पंडित जी तो बहुत पसंद चल रहे थे। समझे ना, अरे वे तो ज्ञानी जनतों तो वर्तमान के एक समय की समस्या को किसी तरह भोग लेते हैं, इस तरह से उसके भोगता नहीं है, और उस समय भी उनके कर्मों की निद्रा होती है। तो आज तो समय हो गया, मैं कल बताऊंगा आपको कैसे होती है निद्रा, करुणानियोग के शास्त्रों के हिसाब से, समय सारणी गोमर साहब के हिसाब से बताऊंगा। अभी तो अपन पढ़ रहे हैं ना, उदय गत जो भोग हैं उनमें वियोगी बुद्धि है, अरे अनागत भोग की सद्ज्ञान के कांक्षा नहीं। वर्तमान में वियोगी बुद्धि है, अनागत की कांक्षा नहीं है, भूतकाल की छुट्टी हो गई, अरे तीन काल के भोगों का वो कर्ता भोगता नहीं बनता, इसलिए उसे बंध नहीं होता और निद्रा होती है। देखो आचार्य देव इस गाथा में यही बताना चाहते हैं कि भूतकाल के भोग तो गए, काल के गाल में समा गए, और वर्तमान के भोगों में वियोगी बुद्धि होने से और आगामी भोगों की चाह न होने से ज्ञानी तीनों कालों के भोगों से ही विरक्त है, इस कारण उसे ना तो इनका परिग्रह होता है और ना ही इनसे होने वाला बंध होता है। ये बात निद्रा अधिकार में बता रहे। आप कहोगे कैसी बात है कि इनको छोड़ो, छोड़ने का तो उपदेश दे नहीं रहे। अरे भैया ज्ञान में ये भोग सुखरूप नहीं है और इनका तू कर्ता भोगता नहीं है, ये समझना ही वास्तव में इनको छोड़ना है। क्या ये समझना कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे नहीं है, ये ही छोड़ना है, क्योंकि आज तक ये तेरे हुए ही नहीं। इनका एग्रीमेंट किनके साथ है? करण के उदय के साथ है भाई साहब। आप समझते हो कि आपके आपके कर्तृत्व के साथ है, मैंने खूब कोशिश करके संभाल के रखूंगा तो रहेगा, धोखे में मत रहना, कर्म खलास हुआ गया, समझे ना। चक्रवर्ती का बेटा आज तक चक्रवर्ती नहीं हुआ, और चक्रवर्ती का बाप भी चक्रवर्ती नहीं होता, तीर्थंकर का बाप भी तीर्थंकर नहीं होता, और तीर्थंकर का बेटा भी तीर्थंकर नहीं होता, वो उसके उसी के साथ जाती है भाई साहब। जो चक्रवर्ती मरता है कि मोक्ष जाता है कि दीक्षा लेता है, उसी समय वो जो 32,000 मुकुटबद्ध राजा होते हैं ना, वो सब आजाद हो जाते हैं और इस देश के इसके 32,000 टुकड़े हो जाते हैं, हरे कात्मात्मा देश। समझ रहे ना, एक सेकंड में बेटे को चाह जैसा राज तिलक करे, वो उसके राज तिलक करने से क्या होता है कि सारे वे मान जाएंगे कि इनको माना था तो उसे मान लेंगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो उसके पुण्य का संयोग था, वो उसके साथ गया और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह जानता है, ख्याल में आई ना। तो इसलिए कहते हैं भाई कि ये तुम इस बात को समझो कि ये तेरे हैं ही नहीं, कि छोड़ने के नहीं छोड़ने, तुम्हें तो छोड़ने के नहीं छोड़ने के चक्कर में पड़े हो। तो यदि अच्छे पंडित जी आए कि ये कहते छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, छोड़ने की भी जरूरत नहीं है, भरी पर खाओ, फिर क्या कहते गनोड़े खाओ, भरी पल्ली ओढ़ो, गनोड़े खाओ, मोक्ष चले जा, ऐसा धर्म है। अरे हम क्या कहते हैं उसका भाव समझो गहराई से, ख्याल में आई ना। ये तो पुण्य के साथ बंधे हैं, इनका एग्रीमेंट तेरे साथ नहीं है। एक दो मिनट का उदाहरण लेके खत्म करता हूं बात। सच्ची घटना है कि हम बंबई में एक शेठ जी के घर ठहरे थे और हमको जहां जाना था सृष्टन करने के लिए उनने नौकर को बुलाया, ड्राइवर को बुलाया, ऑर्डर दिया कि पंडित जी को वहां प्रचुन करने जाना है तो वहां छोड़ के आओ। तो मैंने कहा हम मंदिर भी जाएंगे, पहले मंदिर जाएंगे फिर दर्शन करेंगे और फिर बाद में हम वहां प्रचुन करने जाएंगे भारतीय विद्याभवन में। तो ठीक है ठीक है, पंडित जी जहां जाए उनको वहां ले जाओ जहां वे कहें। तो अब हमारे अंदर में तो हम जहां कहेंगे जाएंगे हम तो मंदिर चलो वहां चले गए, फिर वहां से गए यहां चलो वहां चलो, एक आध दो घंटा घुमाया तब पहुंचे। फिर तो आगे शेर जी ने उसकी क्यों कितनी देर में कहां लगाई, फिर तो आपने कह दिया था पंडित जी जहां कह रहे चले पंडित जी जहां कह रहे तो रहे। फिर मालूम नहीं था स्कूल से लड़की लेने जाना था, मैंने इतना कहा था मंदिर हो गया वहां छोड़ के आ जाता। अब कह दी उनको फिर दूसरे दिन कह दिया मैंने, अब दूसरे दिन हम तो कोई समझ रहे हमारे अंदर और हमने उसे कहा हुआ तो नहीं था, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो फिर भारतीय विद्या बन जाके आपको छोड़ के मिले विद्या बन जाऊंगा। फिर आंख पकड़ के बात करने लगे नहीं क्या हुआ ही? अरे वो तो कल भी तुम्हारी आज्ञा में नहीं था, फिर उनने कह दिया था क्या कि जहां कहे वहां जाना, वो सेठ जी का नौकर है तुम्हारा नहीं, ये सारे संयोग कर्म के नौकर हैं तुम्हारे नहीं, धोखे में मत रहना बेटा। क्या वो गए तो ये गए, तुम जिन्हें अपना माने तुम्हारी इच्छा से इनमें कुछ भी चलने वाला नहीं है, ये समझो हम छोड़े कि नहीं छोड़े तुम्हारे हाथ में है क्या, जब तक इन्हें रहना है रहेंगे और जब जाना है जाएंगे हम, ये बात कहना था।